તારીખ 6/6/1996 શ્રી નિયમસાર ગાથા 50 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 7
महान आता है अपने स्वरूप की भावना पाए तो किस ढंग से इस इसका कोई दृष्टांत है या स्वरूप है तो ये नियम चालू है और उत्कृष्ट उपाय से आपकी स्वरूप की भावना पाई है। उसमें भी कुछ गाथाएं ऐसी है कि जो भावना की चौधना को दर्शाती है, बताती है। ऐसी 50वीं गाथा भी ऐसी ही है, सारे मंच में सुनिए 175 गाथा है, 187 गाथा है, उसमें 50वीं गाथा और 24वीं गाथा दो गाथाएं तो भावना के बहुत चरम सीमा को बतलाती है। नियम था कुमकुंड आचार्य कहते हैं कि इस वह शास्त्र मैंने तो मेरी भावना के लिए बनाया है। बहुमत आचार्य ने शास्त्र बनाते हैं और समाज को शासन को लक्ष्य में रख करके उपदेश देने के लिए बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे आचार्य अपने स्वरूप भावना आत्मभावना के लिए भी शास्त्र बनाते हैं। ऐसे ही योगेंद्र देव ने परमात्म प्रकाश भी ऐसा ही बनाया, तो इस वर्ष प्राप्ति की भावना का ग्रंथ है, तो एक इस वर्ष की भावना का ग्रंथ है। मैंने तो मेरी भावना के लिए बनाया है। आखिर में शब्द है मयो कदम, आखिर की गाथा में ये शब्द है मयो कदम, ऐसा शब्द कहीं भी नहीं है, क्योंकि मैंने दूसरी रचना है समय सार प्रवचन सार उसमें वो बात नहीं है। यहाँ यह शब्द पड़ा है कि मैंने अपनी भावना निश्चित नियम सार नाम का शास्त्र बनाया है, मैं किया है, मैंने बनाया है, ऐसा लिखा है, तो उसमें से कोई ऐसा कहता है कि वो शब्द को आचार्य ने तो बनाया कि नहीं बनाया, ऐसा नहीं है। वो तो कहते हैं कि किया है, ये तो भाषा का भाव है। मैंने मेरी भावना अंदर आनंद स्वरूप भगवान है, आत्मा एकाग्रता और एकाग्रता के लिए यह शास्त्र बनाया है। भावना का परिणाम क्या आता है, भावना का फल क्या आता है, इस स्वरूप की एकाग्रता, स्वरूप की एकाग्रता विकल्प वाली भावना चलते हैं चलता है। स्वरूप की भावना विकल्प वाली भावना में भाव चलते हैं, उसके फल स्वरूप की एकाग्रता उत्पन्न हो जाती है। एकाग्रता को भी स्वरूप की भावनाएं भूली जाती है, इसलिए भावना दो तरह की होगी, एक विकल्प वाली भावना जिससे एक ग्रंथ गाथाएं की रचना हुई, और एक स्वरूप में एकाग्रता होगी वो भी आपका स्वरूप की भावनाएं भूली जाती है। आखिर मई कदम भावना के लिए मैंने किया ऐसा शब्द है, ये मई कदम मैंने किया है। हाँ, पचास में बैठा है तो अलौकिक है। पहले आगे कि जो कोई भी विभाग में पचास है वो व्यवहार में से जानने लायक है, ऐसा कहा था। विभाग पर्याय है, मैंने विभाग पर्याय है, गुण की पर्याय हो, ग्रंथ की पर्याय हो, विभाग की, उसको जानने का विषय है, ऐसा पहले आ गया था। परंतु शुद्ध निश्चय नहीं के दर्शन वे हेय है, ये सभी विभाग हेय है, सभी विभाग हेय है। किस प्रकार से यही है कि शुद्ध निश्चय नहीं के दर्शन यही है। महाराज लोग शुद्ध निश्चय में इस विषय को अवलोकन लेने का पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ से इन विभाग का अभाव हो जाता है, इसलिए उसका त्याग करने योग्य है। माने त्याग करने योग्य है यानी छूट जाता है, विभाग परिणाम छूट जाता है। व्यवहार आता है, व्यवहार बीच में आता है, पर्याय पर तो पर्याय है, व्यवहार जो है पर्याय है। ये सब जानने लायक तो है, इस भूमिका में कैसा कैसे व्यवहार की पर्याय होती है वो जानने लायक तो है, परंतु भेद है। समझ में आया, जो पर्याय जाने तो यथार्थ प्रयोग का आश्रय की खबर ही नहीं है। यदि पर्याय को नहीं जाने तो पर्याय को जानना भी नहीं है, या व्यवहारने के विषय को जानना भी नहीं है, तो यथार्थ प्रयोग के आश्रय की तथा उसको खबर ही नहीं है। क्योंकि आश्रय कौन करती है, पर्याय करती है, पर्याय को नहीं जानना तो उसको आश्रय करना वो बात को भी खबर नहीं है, तो थोड़ा कार्य पर्याय में होता है, वो भी प्रभाव है। तो ऐसा पर्याय को नहीं जानने की जो बात करता है उसमें एकांत हो जाता है। क्या होता है उसमें
एकांत,
एकांत हो जाता है,
या पर्याय हो जाएगा, पर्याय कार्य हो
जाएगी, कार्य रूप में पर्याय स्वयं कार्य रूप है। पर्याय इस भूमिका में कैसा कार्य करती है वो बात नहीं जाने, तो द्रव्य आश्रय कौन करता है, कैसे करता है, वो बात को कैसे पता चलेगा, आश्रय की कार्य का पता भी कैसे चलेगा। क्या कारण होता है कि कोई निश्चय आभासी द्रव की बात करता है कि हमको तो द्रव से मतलब है, पर्याय से कुछ मतलब उसको कहते कि नहीं जानने लायक है, जान करके हेल करना है, जानना भी नहीं है वो बात
नहीं
है, पर नहीं जाएगा। अगर कोई है कि जानना भी नहीं है तो वो बात वो एकांत हो जाता है, पर एकांत हो तो मिथ्या पर्याय है, व्यवहार है, ये जानने लायक है। परंतु किसको जानने लायक है वो भी किसको, कि जिसको अपना स्वभाव का अनुभव आनंद स्वरूप भगवान का अनुभव करता है, उसको उसको भी अपना स्वभाव का अनुभव यानी आनंद स्वरूप अपना भगवान है उसका अनुभव रखता है,
उसको जानते
हैं बोलो
सेवन एक ही उपाधि है, बाकी सर्व अन्य भाव है। अपना स्वरूप और स्वरूप का आश्रय, बाकी सर्व भाव नहीं है। किस कारण से ऐसा है? कारण कि यह पर स्वभाव है, बाकी के जो विभाव भाव है वो पर स्वभाव है, इसलिए ये यही है। आहा, यहाँ तो पर्याय मैंने क्षायिक भाव को भी पर स्वभाव कहा है। इस गाथा में जो पर्याय है उसमें जो क्षायिक भाव है उसको भी पर स्वभाव कह करके यही कहा है। यह त्रिकाली की अपेक्षा से है, अपना कारण परमात्मा परम शुद्ध स्वरूप उपाधि है, इस अपेक्षा से पर्याय को वहाँ है कहा है। ऐसे तो पर्याय है अपने में, पर्याय में अवस्था अपनी क्षायिक अवस्था धर्म भाव की अवस्था वो तो अपने में है। क्षायिक भाव में क्षायिक सम्यक दर्शन आता है, क्षायिक भाव में केवल ज्ञान आता है, क्षायिक भाव में यथाख्या चारित्र आता है और क्षायिक भाव में परमानंद आता है। अनंत पुरुषार्थ भी जो तेरहवें गुण स्थान में प्रकट होता है वो क्षायिक भाव में आता है, तो उसको भी यही कहा। इसका मतलब क्या कि हमको त्रिकाली स्वरूप की भावना हम तो भा रहे हैं, हम एक समय की पर्याय की भावना में नहीं है। इसलिए त्रिकाली की अपेक्षा से ऐसे तो पर्याय है अपने में, परंतु यह पर्याय को द्रव्य स्पर्शता नहीं, पर्याय हमेशा पर्याय रहती है और त्रिकाली स्वभाव द्रव्य स्वभाव जिसको द्रव्य कहते हैं वो हमेशा अपने स्वरूप में रहता है, दोनों एक दूसरे को छूता नहीं है। इस अपेक्षा से उसको पर स्वभाव कहा, पर स्वभाव का उसमें यही अपेक्षा है। समझ में आया? यद्यपि यह जो पर्याय है वही द्रव्य का निर्णय करती है और वही अनुभव करती है, पर्याय है वही द्रव्य का निर्णय करती है और वही द्रव्य का अनुभव करती है, फिर भी यह पर्याय द्रव्य को स्पर्शती नहीं है, वो अपने में रह करके द्रव्य का अनुभव करती है, यह द्रव्य को स्पर्श करती नहीं है। उस कारण से उसको यही कह करके पर स्वभाव कहा, यही कारण से उसको यही करके कह करके पर स्वभाव बोला है। संस्कृत टीका में ऐसा है कि कुतः के पर स्वभावात पर स्वभावत्वात ऐसा लिखा है संस्कृत टीका में, अतएव परद्रव्यम भवति, संस्कृत टीका में इस प्रकार से लिखा है कि शाक इस किस कारण से, कारण कि यह पर स्वभाव है अतः परद्रव्य है, पर स्वभाव होने से पर द्रव्य है। आशय क्या है इसमें? ऐसा कहने के पीछे आशय क्या है कि क्षायिक पर्याय है ये सर्वोत्कृष्ट कोटि की पर्याय है। चार प्रकार के पर्याय होती है, वो बात आगे चल गई है, ये तो बीचमा बीच का प्रवचन है। उदय उपशम क्षयोपशम और क्षायिक, जीव को चार प्रकार के पर्याय में सभी जीव आ जाता है, एक भी परिणाम ऐसा नहीं है वो चार के खाते में से बाहर कोई परिणाम हो सके। वो चारों में जो क्षायिक भाव है वो सर्वोत्कृष्ट पर्याय है, उसको हेय कह दिया, तो बाकी की तो सब हेय हो ही गई, कहने की जरूरत नहीं है। अब ये सबसे उत्कृष्ट अवस्था केवल ज्ञान परमानंद क्षायिक सम्यक दर्शन वो भी हेय है, इसका मतलब क्या है? कि किसी भी प्रकार के पर्याय अवलंबन लेने योग्य आश्रय नहीं किया जा सकता पर्याय का। आप कहेंगे कि कैसे, तो वो तो समयवर्ती है, कोई भी पर्याय होती है वो एक समय की होती है, बहुत सूक्ष्म काल है, एक सेकंड का असंख्यवां भाग है वो, कितना, एक सेकंड का हजारवां नहीं, लाखवां नहीं, करोड़वां नहीं, अरबवां नहीं, इसके आगे जाना पड़े, असंख्यवां भाग। आलंबन कैसे लोगे? और आलंबन लेना वो छद्मस्त का उपयोग से होता है, छद्मस्त की सावधानी से होता है, और छद्मस्त को आलंबन लेने में असंख्य समय लगता है, इसका उपयोग स्थूल है, असंख्य समय लगता है, किस पर्याय का वो आलंबन लेगा? तो एक भी पर्याय का आलंबन वो ले सकता भी नहीं है, फिर भी वो आलंबन लेने के लिए माथा लगाता है। तो ये पर्याय का चक्र उतना तेजी से फरता है, उतना तेजी से फरता है, जैसे ये पंखा फरता है ना, इसमें कोई अंगुली रख दे तो कट जाए, और माथा रखे तो फट जाए, हाँ, ऐसे पर्याय का चक्कर इतना तेजी से फिरता है कि उसमें कोई माथा लगाता है तो माथा फटता है, माने आकुलता होती है, दुख होता है, पर्याय के आलंबन से जीव को दुख ही दुख होता है, क्योंकि ले नहीं सकता, फिर भी लेने का प्रयास करेगा तो दुखी होगा। जो कार्य अशक्य है वो कोई करने को जाएगा तो बालों में से तेल निकालना जाए, निकालने को प्रयास करेगा तो नहीं निकलेगा, और बालों में से कोई लड्डू बनाना चाहे तो कि उसमें घी डालो, गुड़ डालो, शक्कर डालो, खाने लायक लड्डू बनेगा क्या? लड्डू में तो एक कंकर भी आ जाए तो निकालना पड़ता है, तो बालों में से तो लड्डू कैसे बनेगा? ऐसे पर्याय का आलंबन कोई ले सकते नहीं, लिया जा सकता नहीं, इसलिए वो लेने योग्य भी नहीं है। तो आचार्य देव तो ज्ञानी हैं, जानते हैं सब बात को, तो कहते हैं कि वो तो मेरे लिए नहीं है, क्षायिक भाव हो तो भी मेरे लिए नहीं है। तो प्रश्न करता है कि क्षायिक भाव को आपको केवल ज्ञान तो प्रकट किया नहीं, फिर भी उसको प्रकट किए करने के पहले उसको हे कह देते हैं, तो प्रकट होएगा कैसे? कि ऐसा केवल ज्ञान स्वरूप के अवलंबन से प्रकट होता है, और मैं मेरे स्वरूप की भावना के लिए इसको आश्रय करने के कारण से उसको हे करता हूँ, इसलिए केवल ज्ञान अवश्य अवश्य प्रकट होगा, और यही एकमात्र कार्य पद्धति है, इसके सिवा दूसरी विधि है ही नहीं, केवल ज्ञान प्रकट करने की भी दूसरी विधि नहीं है। क्या कहते हैं? वो परद्रव्य है, इसका अर्थ ऐसा भी होता है, इसमें से एक ऐसा न्याय भी निकलता है कि जैसे परद्रव्य में से मेरी नई पर्याय आती नहीं, कोई अन्य द्रव्य में से मेरी अवस्था पैदा नहीं होती, राग में से भी नहीं आती, वैसे ही पर्याय में से भी नहीं पर्याय नहीं आते, ये भी एक न्याय निकलता है। यह अपेक्षा से वर्तमान क्षेत्रम क्षाई आदि पर्यायों को भी परद्रव कह दिया है। जैसे परद्रव है उसमें से अपनी पर्याय नहीं आती है, तो पर्याय में से पर्याय नहीं आती है तो वो भी परद्रव के स्थान में गिन लो उसको। इसलिए परद्रव्य कायिक आदि पर्याय को भी परद्रव्य कह दिया है। आहा परम सत्य तो यह है, यही परम सत्य आखिर का सत्य, परम सत्य मैंने आखिर का सत्य तो वो है। प्रभु यह पूर्वोक्त स्वभाव परद्रव्य है। गुरुदेव सुनने वाले को भी प्रभु कहते थे। क्या कहते थे? सुनने वाले को भी वो प्रभु कहते थे। वो ऐसे नहीं कहते थे कि मैं गुरु हूँ आप लोग मेरे शिष्य हैं, ऐसे नहीं कहते थे। आप लोग भी आत्मा है और आत्मा अपने स्वरूप से परमात्मा है, इसलिए वो भी परमात्मा की दृष्टि से देखते थे और प्रभु करके पुकारते थे, बुलाते थे कि प्रभु यह तो परद्रव्य है, मेरी जो नई शुद्ध पर्याय है जो मेरे आश्रय से उत्पन्न हुई और आश्रय से ही टिकती है, उससे ही टिकती है और उसके आश्रय से वृद्धि को प्राप्त होती है, बढ़ती है तो भी स्वरूप के आश्रय से, उत्पन्न होती है तो स्वरूप के आश्रय से, उसमें बढ़ती है शुद्धि बढ़ती है तो स्वरूप के आश्रय से, टिकती है तो भी स्वरूप के आश्रय से। यह पर्याय का आश्रय से उत्पन्न नहीं होती, वह पर्याय कोई दूसरी पर्याय के आश्रय से उत्पन्न नहीं होती। और दूसरी पर्याय का आश्रय होवे भी कैसे? खुद तो आश्रय लेने वाली पर्याय है और एक समय में एक द्रव्य को दो पर्याय तो होती नहीं। खुद आश्रय लेगी तो किसका लेगी? दूसरी तो पर्याय विद्यमान नहीं है। भूत भविष्य की पर्याय तो कोई विद्यमान नहीं है। वर्तमान पर्याय खुद तो आश्रय लेने वाली है, अब आश्रय किसका ले रहे वो? कि द्रव के सिवा किसी का आश्रय लेने का कोई रास्ता नहीं है, है? हाँ। दूसरी पर्याय का मानो आश्रय लेना है तो भी है नहीं, अविद्यमान पर्याय का आश्रय कैसे लिया जा सकता है? हो ही नहीं सकता। जो चीज नहीं है उसका अवलंबन कैसे ले? तो नित्य उपस्थित कोई है वो तो ध्रुव स्वभाव त्रिकालीय आत्मद्रव्य है, वही हमेशा मौजूद है। पर्याय तो समय समय में विनश्वर है, वो कोई टिकती नहीं। जो टिकती नहीं इसका आश्रय भी कैसे ले सके? यह पर्याय का आश्रय से उत्पन्न नहीं होती, टिकती नहीं, वृद्धि पामती नहीं है। आहा यह तो अंदर की बात है, ये आत्मा के अंदर में स्वरूप साधना होती है, वो साधना के आराधना की बात भीतर की बात है। समझ में आता है कुछ? ये पर्याय है वो परद्रव्य है, उसको भी परद्रव्य कह दिया है। अपनी पर्याय है तो भी परद्रव्य कह दिया है, वो है बताने के लिए कहा है, आश्रय छुड़ाने के लिए कहा है। अब स्वद्रव्य को कहते हैं, अब क्या कहते हैं? कि स्वद्रव्य को कैसे पर्याय परद्रव्य है तो स्वद्रव्य कौन है, कैसा है, ये भी तो बताना चाहिए ना। कि सर्व विभाव गुण पर्यायों से रहित शुद्ध अंत तत्व स्वरूप उसे स्वद्रव कहेंगे। किसको स्वद्रव कहेंगे? कि सर्व विभाव गुण पर्याय उसे रही, किसी भी प्रकार का विभाव जिसमें नहीं हो, गुण का भी और पर्याय का भी, और शुद्ध अंत तत्व स्वरूप, मूल अंत तत्व मैंने मूल स्वरूप, आत्मा का मूल जो स्वरूप है वो शुद्ध अंत तत्व स्वरूप है। अंत तत्व इसलिए बोला कि बाहर में वो दिखाई देता नहीं है। हाँ, मूल स्वरूप मैंने टीका दी, द्रव्य वही अंत तत्व स्वरूप है, वही ध्रुव द्रव्य है, वही कारण परमात्मा है, वही कारण परम पारिणामिक भाव है, और वही ज्ञायक स्वभाव वही है, सब एक अर्थ है, एक ही तत्व का ये सब नाम है। उसे स्वद्रव कहेंगे, और पीछे स्वद्रव का आधार के विषय में कहेंगे कि ये स्वद्रव का आधार कौन है। स्वद्रव कौन है? कि शुद्ध अंत तत्व अर्थात तत्व अर्थात भाव, शुद्ध भाव, ये शुद्ध भाव अधिकार चलता है ना, उसको शुद्ध भाव भी कहते हैं, शुद्ध तत्व भी कहते हैं, बनी रीति है दोनों रीति। तत्वार्थ आता है ना, तत्वार्थ ऐसा शब्द आता है ना शास्त्र में, जैसे कि मोक्ष शास्त्र के पहला अध्याय का दूसरा सूत्र है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कुमार स्वामी महाराज का ये ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र, उसमें ग्रंथ का नाम भी तत्वार्थ सूत्र है, और दूसरे सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा बोला है कि जो तत्वार्थ का श्रद्धान करता है वही सम्यक दर्शन है। वहाँ अर्थ माने द्रव्य, द्रव्य गुण और पर्याय, तत्वार्थ मैंने तत्व का द्रव्य गुण और पर्याय, उसको कहते हैं तत्वार्थ, और तत्व माने भाव। यह स्पष्टीकरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है, तत्वार्थ शब्द का अर्थ क्या होता है इसका स्पष्टीकरण टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इस तरह से किया है, तत्व प्लस अर्थ बराबर तत्वार्थ, तत्व वत्ता अर्थ, इसको कहते हैं तत्वार्थ। तत्व क्या और अर्थ क्या? द्रव्य गुण और पर्याय तीनों को अर्थ कहेंगे, और इसके भाव को तत्व कहेंगे। ठीक, द्रव्य गुण और पर्याय उसको तत्व कहेंगे, और इसके भाव को अर्थ कहेंगे। अर्थ मैंने शब्दार्थ नहीं, अर्थ मैंने इसका भाव, द्रव्य का भाव, गुण का भाव, पर्याय का भाव, उसको कहा अर्थ। यहीं यह शैली, यह पद्धति लिया है, शैली मैंने पद्धति को लिया है। उसे स्वद्रव कहेंगे, क्या कहा कि शुद्ध अंत तत्व स्वरूप, मैंने शुद्ध अंत तत्व, मैंने शुद्ध अंत भाव स्वरूप, अंदर का भाव, मूल भाव ऐसा लेना, अंत भाव स्वरूप, शुद्ध अंत तत्व स्वरूप, शुद्ध अंत भाव स्वरूप, उसको स्वद्रव कहेंगे, और स्वद्रव का आधार परम पारिणामिक भाव है कहेंगे। स्वद्रव का आधार कौन है? परम पारिणामिक भाव। ये गूढ़ बात है, भगवान कह करके प्रभु कहते हैं, सुनने वाले को प्रभु भी कहते हैं और सुनने वाले को भगवान भी कहते हैं आधार आधेय दोनों एक है, दो नहीं है, ऐसा कहते हैं। भगवान है, सुनने वाले भी भगवान है और नहीं सुनने वाले भी भगवान ही है। सब आत्मा है ना, तो आत्मा का स्वरूप तो भगवान ही है। अगर हम ऐसा कहेंगे कि आप लोग सुनने को आए हैं घर में और ज्ञानी की नजर में सभी आत्माएं भगवान ही भगवान है, हैं? ओ भवि भी भगवान है और भवि भी भगवान है, ऐसी नजर ऐसी है। अब किसके प्रति राग द्वेष करना, कि किसी के भी प्रति करने लायक तो भगवान ही भगवान है, इस दृष्टि से देखना है। ये भगवान की द्रव्य दृष्टि है और यही सम्यक दृष्टि है, उसको द्रव्य दृष्टि भी कहते हैं, क्योंकि द्रव्य स्वरूप से भगवान है और उसी को द्रव्य दृष्टि को ही सम्यक दृष्टि बोला जाता है। क्या कहा, स्वद्रव्य का आधार परम परिणामिक भाव कहेंगे, ये गुड़ बात है भगवान। आहा, शुद्ध अंत तत्व स्वरूप यह स्वद्रव्य, शुद्ध अंत स्वभाव स्वरूप ये स्वद्रव्य, शुद्ध अंत भाव स्वरूप ये स्वद्रव्य, स्वद्रव्य ऐसा है। यहाँ त्रिकाली द्रव्य को नहीं लिया, परंतु पहले भाव को लिया है, पहले त्रिकाली द्रव्य ऐसा नहीं लिया है, उसको भाव बोला है। जबकि शायिक औपशमिक आदि पर्याय को परद्रव्य कहा, तो यही अंत तत्व भाव स्वरूप को स्वद्रव्य कहा, भाव को स्वद्रव्य कहा है। नहीं, भाव मैंने स्वभाव भाव, स्वभाव को स्वद्रव्य कहा, क्यों कि पर्याय को परद्रव्य कहना है, इसलिए कहने के पीछे आशय है। यह पर्याय जब परद्रव्य कहा, तो जो अंत तत्व जो स्वभाव भाव है वो तो त्रिकाली भाव है, हाँ वो त्रिकाली भाव है, भाव हो तो भाव की बात कहते हैं। मैंने द्रव्य को भावात्मक लेते हैं, द्रव्य को भावात्मक लेते हैं, क्योंकि त्रिकाली भाव है वो स्वद्रव्य है, भावमान बाद में लिया है। शुद्ध अंत भाव स्वरूप वह स्वद्रव्य, वह उपादेय है, उपादेय का अर्थ वही अनुभव करने लायक है, यह अगल आएगा तो वही अनुभव करने लायक है। अब कहते हैं, अब टीका की शुरुआत करते हैं कि खरेखर सहज ज्ञान, अब जो अंत तत्व कहा, परम परिणामिक भाव कहा, भाव कहा, सब स्वभाव कहा, वो क्या है कि खरेखर सहज ज्ञान है, वो यहाँ से शुरू करते हैं, वो सहज ज्ञान है। जो अंत तत्व अंत भाव कहा ने, अब यह भाव की व्याख्या करते हैं, कैसा भाव, कि सहज ज्ञान। सहज ज्ञान मैंने पर्याय में जानता है वो ज्ञान नहीं, सहज मैंने स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव को ज्ञायक कहो, ज्ञान स्वभाव को अंत तत्व कहो, तो सहज ज्ञान कहो और उसको स्वद्रव्य कहो, एक ही बात है। कैसा है भाव, के सहज ज्ञान, त्रिकाली ज्ञान स्वभाव, सहज ज्ञान मैंने त्रिकाली ज्ञान स्वभाव, त्रिकाली ज्ञान ध्रुव भाव, त्रिकाली ज्ञान मैंने ध्रुव भाव, सहज ज्ञान त्रिकाली, त्रिकाली स्वाभाविक वस्तु किसी की बनाई हुई नहीं, अपने आप बनी बनाई है, बनी बनाई है, किसने नहीं बनाई नहीं है, वो त्रिकाली है। ऐसा सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, वो सहज चारित्र त्रिकाल, पर्याय की बात नहीं लेना, सहज मैंने स्वाभाविक, ऐसा स्वभाव। एक बार ऐसा प्रश्न उठा था, किसी ने प्रश्न उठाया था कि सिद्ध भगवान को चारित्र नहीं होता, चारित्र तो साधक अवस्था में होता है और बारहवें गुण स्थान में पूरा हो जाता है यथाख्यात चारित्र, फिर चारित्र नहीं होता। हाँ, परंतु ऐसा नहीं है, संयम रूप चारित्र नहीं होता, शरीर नहीं है ना, सिद्ध भगवान को शरीर नहीं है, तो शरीर है तो वहाँ संयम असंयम का प्रश्न उठता है, तो ऐसा संयम रूप चारित्र नहीं होता। परंतु सिद्ध भगवान में चारित्र है, चारित्र गुण की अवस्था है, तो चारित्र है, न गुण का नाश होता है न उसकी अवस्था का नाश होता है। यानी चारित्र तो है, सहज चारित्र स्वभाव है, सहज चारित्र तो आत्मा का स्वभाव है, जैसे सहज ज्ञान स्वभाव है वैसे सहज चारित्र स्वभाव है। उसको यहाँ स्वद्रव्य में लेना है, वो स्वभाव को स्वद्रव्य में लेना है, और जो पीछे परिणमन होगा, स्वभाव को स्वद्रव्य में लेना है और परिणमन होगा उसको परद्रव्य में लेना है, परिणमन को परद्रव्य में लेना है। देखो ये इस अपेक्षा से हैं, समझ में आया कुछ क्या कहते हैं? अब थोड़ी बात अपने ऐसी चर्चा करें कि मुमुक्षु है वो तो अपने परिणमन सुधारने के लिए तो संसार की प्रवृत्ति छोड़ करके धार्मिक प्रवृत्ति में वो एंट्री लेता है, प्रवेश करता है ना, क्यों करता है? कि संसार की प्रवृत्ति में दुखी होता है, पाप होता है, पाप का फल आता है, दुखी होता है, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ होता नहीं, इसकी उसका दुख भी, उसको टेंशन भी रहता है। अब वो जो परिणमन को सुधार बिगाड़ का जो प्रकरण है, वो सारा प्रकरण को यहाँ उड़ा दिया है स्वरूप की भावना के आगे, मुझे मेरा स्वरूप चाहिए, परिणमन परिणमन परद्रव्य है, मुझे उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई परद्रव्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे मुझे भी परिणमन करने की कोई जरूरत, परिणमन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं स्वद्रव्य स्वरूप हूँ, बस मैं स्वद्रव्य स्वरूप हूँ, यही भाव है, वही भाव सम्यक है, और वही भाव से सब परिणमन ठीक हो जाता है, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं स्वद्रव्य हूँ, वैसा का वैसा रहता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बात किया है, बहुत उत्कृष्ट बात किया है। जैन दर्शन के तत्व ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट बात यहाँ आई है, इससे आगे कोई बात नहीं है तत्व ज्ञान में। क्यों? तो पूरा परिणमन को गौण कराया है, क्योंकि आश्रय करने लायक नहीं है, भावना हो तो हो लेकिन अवलंबन के योग्य नहीं है, ये बात है। इसलिए उसको पर स्वभाव पर द्रव इस अपेक्षा से कहा है। पर्याय को गौण कर देना, जो भी पर्याय होवे चाहे पहले वाली पर्याय से अधिक गुणवान होवे, परिणमन आगे बढ़ता जाएगा, पर्याय में गुण प्रकट होता जाएगा, शुद्धि प्रकट होती जाएगी, आनंद प्रकट होता जाएगा, उसको गौण कर देना। अगर इसको मुख्य किया तो अहंकार और अहम भाव आए बिना रहेगा नहीं। और ये मुख्य होकर के मिथ्यात्व को बढ़ाया है, दर्शन को बढ़ाएगा। पर्याय को मुख्य करने से पर्याय दृष्टि माने दर्शन वो तीव्र हो जाएगा, ये साफ बात है। नहीं, पर्याय जानने में आएगी, गौण करो उसको, जानने में आवे उसको गौण करो। ये भगवान की आज्ञा है। तीर्थंकर देव ने कहा कि हमने भी ऐसा ही किया है, परमात्मा प्रकाश में तो ऐसे गाथा लिया है, ऐसी गाथा लिया है कि तीर्थंकर देव ने देह में रह करके कहा कि मैं मेरा जन्म मरण तो नहीं, लेकिन मैं उत्पाद भी में भी आता नहीं। नवी उपजई न मरेई न बंधन मोख करे, ये 65 में क्या था है परमात्मा प्रकाश। नवी उपजई नवी मरेई, मैं पैदा भी नहीं हुआ, मैं कभी मरने वाला भी नहीं, क्योंकि मेरा शाश्वत स्वरूप है, अनादि अनंत शाश्वत ध्रुव टिकने वाला मैं आत्मा हूँ, कभी जन्मता मरमता नहीं हूँ। न बंधन मोक्ष करे, बंध मोक्ष से मेरे क्या लेना देना है, मैं तो बंध मोक्ष की पर्याय से रहित द्रव्य। जिनवर ऐसे बने, जिनवर ने ऐसा कहा है, ऐसा जिनवर ने कहा है, वो हम बात कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि वो बात हम कहते हैं, जिनवर ये वो बने ऐसा लिया है। इसमें द्रव्य दृष्टि प्रकाश में वो बात है, अड़सठ में क्या था पर्वत प्रकाश, 65 में 68 में क्या था, नवी उपजई नवी मरई बंधन मोख परे, जीव परमथ्य जोइया, जीव का परमार्थ स्वरूप है ऐसा देखा किसने, तीर्थंकर देव ने ऐसा देखा कि अरे भाई तेरा मूल स्वरूप तो ऐसा है कि तू जन्मता नहीं, तू मरता नहीं, बंध मोक्ष को भी तू करता नहीं। जीव परमथे जोइया जिनवर एवं भणे, जिनवर देव ने ऐसा कहा है, उपदेश में ऐसा जीव का स्वरूप बतलाया है, तुम ऐसे अपना स्वरूप को जानो, उसकी दृष्टि करो, यही तुम्हें कर्तव्य है। तुम भूल गया है, अपने स्वरूप को भूल गया। ऐसे स्वरूप को जाने बिना जीव ने अनंत दुख को भोगा है। ये स्वरूप समझा दिना पायनो दुख अनंत, वो ये स्वरूप है जो इस गाथा में बता रहे हैं, वही स्वरूप की बात चलती है। सहज चारित्र मैंने स्वाभाविक त्रिकाली चारित्र, अर्थात स्वाभाविक त्रिकाली वीतरागता, स्वाभाविक वीतरागता, स्वाभाविक त्रिकाली अकषाय स्वभाव भाव, स्वभाव भाव क्या, स्वाभाविक त्रिकाली अकषाय स्वभाव भाव, चारित्र स्वभाव यही मूल स्वरूप है। यह चारित्र, उसको चारित्र कहने में आता है। समय सर नाटक में कहा है ने बनारसीदास जी ने, जिनपद नाही शरीर को जिनपद चेतन माही, क्या बोले नाटक समय सार में, कि जिनपद नाही शरीर को जिनपद चेतन माही, जिन वर्णन कुछ और है यह जिन वर्णन नहीं। वो 31-32-33 गाथा में बताया ने, पहले प्रश्न उठाया है समय सार में कि भगवान का शरीर बहुत सुंदर होता है, कांच के जैसा ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे स्फटिक का, स्फटिक की मूर्ति देख लो, और सभी अंग उपांग सुंदर होते हैं, और उसके नाप जैसा होता है, ऐसा ही जो जो नाप होना चाहिए ऐसा ही नाप होता है, कोई लंबा थोड़ा आगे पीछे होता नहीं है, और उसके शरीर की कांति बहुत होती है, तेजस्वी तेजस्वी, कि जिसके आगे सूर्य चंद्र भी फीका पड़ जाता है, टिम टिम टिमटिमिया हो जाता है, इतना तेजस्वी शरीर होता है तीर्थंकर देव का। हाँ, और कभी कोई स्वर्ण रंग वाला होता है तो सोना सोने की मूर्ति देख लो, हा? लाल रंग का देखा है तो माणिक की मूर्ति देख लो, ऐसा शरीर होता है। तो कहते हैं कि जिन पद नाही शरीर को, ये शरीर कोई जिन पद नहीं है, जिन पद चेतन माही, उनके अंदर जो चैतन्य आत्मा है वही जिन पद है। जिन वर्णन कछु और है, ये जो वर्णन किया वो जिन वर्णन नहीं है, यह जिन वर्णन नहीं, ये ऐसे पद लिखा है बनारसीदास जी ने। हाँ भाई, जिन वर्णन कछु और है, जिन वर्णन कछु और है, जिन पद नहीं शरीर को जिन पद चेतन माही, ज्ञानानंद भगवान ध्रुव यह जिन पद है, ज्ञान और आनंद की मूर्ति अंदर में जो चैतन्य है वही जिन पद है। ये जिन पद कहो या वितराग भाव कहो या त्रिकाली अकषाय भाव कहो या चारित्र कहो, सभी एक अर्थ है, उसमें कोई अंतर नहीं है। समझ में आता है कुछ? सहज चारित्र, सहज मैंने स्वभाव, सहज कहने में सहज ज्ञान, मैंने ज्ञान स्वभाव, सहज चारित्र मैंने चारित्र स्वभाव। यहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र और सुख लेना है, टीका में ज्ञान दर्शन और चारित्र जो स्वभाव है और सुख ऐसे बात लेना है, तो अब ये सुख की व्याख्या भी थोड़ी लंबी करी है, लंबी की है। सहज परम वितराग सुखात्मक, क्या ये जो बॉल टाइप में है ना, वो मूल टीका के शब्द है, इसलिए उसको बॉल टाइप में और अवतरण चिन्ह में इन्वर्टेड कॉमा में लिया है। कैसा है आनंद? सुख मैंने आनंद, आत्मा में जो आनंद है वो स्वभाव स्वरूप है, तो आत्मा का स्वरूप ही आनंद स्वरूप है स्वाभाविक। वो कैसा है? कि सहज परम वितराग सुख स्वरूप है, अंदर त्रिकाली भगवान अपना आत्मा, आनंद का कंद कैसा है? आनंद कंद परम सहज स्वाभाविक परम उत्कृष्ट विकराग सुख स्वरूप त्रिकाल है। गुरुदेव ऐसे जब आचार्यों के शब्द पढ़ते थे तो भाव विभोर हो जाते थे, आत्मभाव में विभोर हो जाते थे। वो कहते थे कि अंदर त्रिकाली भगवान आनंद कंद, आनंद का कंद है, आनंद निकलता ही रहता है, अंदर से आनंद निकलता ही रहता है, स्वभाव है वो आनंद कंद है, परम सहज स्वाभाविक परम उत्कृष्ट वितराग सुख स्वरूप त्रिकाल है। वो बोलते बोलते विभोर हो जाते थे। हाँ, भगवान चैतन्य अमृत के सागर से भरा है, आनंद अमृत का सागर से भरा है, चलो चल। उसकी बाढ़ पर्याय में आती है, ओट कभी आती नहीं है, जाओ बाहर में तो समुद्र की ज्वार भाटा होता है ना, बाढ़ आती है वहाँ ओट भी आती है। ये जो अमृत का सागर है उसकी बाढ़ पर्याय में आती है, वोट आती नहीं है, ऐसा है, वन में ट्रैफिक है उसमें तो। हाँ, डुबकी लगा देते थे, बोलते बोलते डुबकी अंदर में देख लेते थे, झांक लेते थे कि मेरा भगवान चैतन्य अमृत के सागर से भरा है। उतना ही नहीं, मेरा अमृत सागर अमृत से उछल रहा है। कैसा है? अमृत का सागर उछलता है, प्रभु चैतन्य अमृत है, यह स्वद्रव है। पर्याय की बात लेना नहीं है, त्रिकाली जो है सामर्थ्य स्वरूप है उसकी बात करते हैं। यहाँ तो कहते हैं कि सहज स्वाभाविक यानी के नहीं बना हुआ, नहीं किया हुआ, नहीं बना हुआ स्वाभाविक परम वितराग सुख स्वरूप है, एकदम सहज अनादि से स्वाभाविक वितराग सुख स्वरूप है। भगवान आत्मा तो सहज स्वभाव परम आनंद रूप प्रभु है, ऐसा भगवान आत्मा है। यह आश्रय करने लायक की बात करनी है कि किसका आश्रय करना है, कि ऐसा परमात्मा का आश्रय करना है। यह आश्रय करने लायक की बात करनी है ना, इसलिए स्वद्र उपाधि है इसकी व्याख्या की है। देखो भी आश्रय करना है तो निज परमात्मा का करो ना, दूसरे की क्यों करे कि मेरा वो आधार है, वो आधार है, कि मेरे तो क्या है, ये सब परिवार है मेरा आधार है, ये संपत्ति मेरा आधार है, ये शरीर तंदुरुस्त रहे तो मेरा आधार है, गलत बात है। अगर तुमको आश्रय करना है, आधार लेना है, तो ये सब फालतू की मिथ्या आधार बुद्धि छोड़ करके अपने निज परमात्मा का आधार लो ना। ये उपदेश है भगवान का, तीर्थंकर देव का यह उपदेश है। इसलिए यशवद्र उपाधेय करके इसकी व्याख्या की है। पहले कहा था ने कि स्वद्र उपाधि है, तो कहते हैं कि स्वद्र किसको कहते हैं, किसको कहा कि इसके भाव को हम स्वद्र कहते हैं, किसको, आत्मा के भाव को, अंदर के अंतर तत्व स्वरूप भाव को हम स्वद्र कहते हैं। शायिक आदि पर्याय को और विभाव आदि को परद्रव कहा, पर्याय को भी परद्रव कहा और विभाव को भी परद्रव कहा, और उस अपेक्षा से उनको परभाव भी कहा। तो यहाँ त्रिकाली स्वभाव भाव को स्वद्रव कहा, इसकी अपेक्षा से यहाँ त्रिकाली स्वभाव भाव को स्वद्रव कहा, अब स्वद्रव की विशेष व्याख्या आएगी, इसी विषय में आचार्य देव विशेष व्याख्या करेंगे कि स्वद्रव किसके आधार से हैं, जिसको आप स्वद्रव कहते हैं उसको आधार किसका, कि स्वद्रव आधे है और त्रिकाली स्वभाव भाव परम परिणामिक भाव आधार है, परम परिणामिक भाव को आधार कहा, स्वद्रव आधे है और परम परिणामिक भाव आधार है। हाँ हाँ, थोड़ा भी बहुत है, थोड़ा कहा है लेकिन भीतर इसमें बहुत कह दिया है। यह चीज के अवलंबन से जो अनुभव होता है, यह पर्याय को आधे मानता नहीं, ऐसे स्वरूप का अवलंबन से जो अनुभव होता है वो अनुभवी ज्ञानी जीव पर्याय का पर्याय को कभी आधे मानता नहीं, आधार भी स्वयं और आधे भी स्वयं। उसमें एक बात जो कह दिया वो मार्मिक कह दिया है कि स्वद्रव आधे और परम परिणामिक भाव आधार। थोड़ा भी ज्यादा है, ऐसा थोड़ा कहा वो भी ज्यादा कहा है, तो मार्मिक बात कर दिया है। वरना तो कोई कहेगी ऐसी बात करने से क्या फायदा है, स्वद्रव भी परम परिणामिक भाव, परम परिणामिक भाव भी स्वद्रव, तो एक को आधे कहे दूसरे को आधे कहे, इसमें क्या बात आई, हमको तो इसमें कोई खास बात लगती नहीं है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि उसमें ज्यादा कहा है, थोड़े में ज्यादा कहा है। तो ये बात किस तरह से है वो अनुभव लेने वाले को पता चलता है। अरे यहाँ स्वभाव भाव कह करके स्वभाव भाव को आधे कहा और परम परिणामिक भाव को आधार कहा, आधार और आधे एक न्याय से भिन्न नहीं है, तो भी एक को आधार आधे कहकर के इसकी भिन्नता क्यों कहते हैं, कि ये थोड़े में ज्यादा कहने की बात है। क्यों कि पर्याय आलंबन लेती है ना, तो आधार तो परम परिणामिक भाव हुआ लेकिन आधे हो गए पर्याय, तो कि नहीं 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 नहीं, यहाँ पर्याय की चर्चा हमें करनी वो उसमें मर्म है। उसमें फिर से कि परम परिणामिक भाव का जो आधार लेती है वो कौन लेती है, पर्याय, तो पर्याय आधे हो गई, आधार हो गया परम परिणामिक भाव, तो कह नहीं, यहाँ जो सहज ज्ञान सहज दर्शन सहज चारित्र जो पर्याय में हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो नहीं, जो सहज ज्ञान सहज दर्शन सहज चारित्र है वही आधार आधे है और परम परिणामिक भाव आधे आधार है। ऐसे परम परिणामिक भाव के आधार से सहज ज्ञान रहता है, सहज दर्शन रहता है, सहज चारित्र रहता है और सहज सुख, जितने भी स्वभाव भाव है वो परम परिणामिक भाव के आधार से रहते हैं। वो हम कहना चाहते हैं, हम वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र त्रिकाली का अवलंबन लेते वो बात की चर्चा यहाँ करेंगे। क्यों कि हमको धुन चढ़ी है हमारे स्वरूप की, हमको भावना आ रही है हमारे स्वरूप की, हमको वहाँ पर्याय का स्मरण भी करना, ये बात चली है। तो बस उत्कृष्ट पद्धति से बहुत ऊंची कोटि का ढंग से ये आत्मस्वरूप की भावना का विषय इन गाथाओं में चल रहा है, वो बात है। हाँ है तो ऐसा है, तो ऐसा, लेकिन सहज ज्ञान सहज दर्शन सहज चारित्र सहज आनंद वो आधेय है और मेरा परमरा स्वरूप परम परिणामी भाव आधा है, आधेय है। तो ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ऐसा नहीं ले, ऐसा समझाने का अभिप्राय नहीं है, है तो ऐसा ही, लेकिन इसमें बात हल्की हो जाती है। ऐसे 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 महान स्वभाव इसका आधार कौन है? तो मेरा परम परिणामी भाव, मेरा मैं ही उसका आधार हूँ। इस तरह से वो अपनी भावना को भाते हैं, सहज ज्ञान द्वारा भी स्वरूप को भाते हैं, स्वरूप चारित्र और सुख के द्वारा भी इसको भाते हैं, और परम परिणामी भाव के भाने भी उसको भी भाते हैं। ये भावना करने की रीत देखना है हमको, कि कुंद कुंद आचार्य की भावना करने की क्या पद्धति है, कि स्वरूप भावना कैसे होती है, ये बात है। नहीं, हाँ, ऐसा जो स्वद्रविण अवलंबन है जिसको अनुभव होता है वो पर्याय को आधार, पर्याय को आधे मानेगा, वो आधार ऐसे स्वद्रव में देगा, ऐसी भावना करने की बात है। भावना करी भी है और उस ग्रंथ लिख करके कराई भी है, ऐसी बात है।